नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। चैट जीपीटी का विकास करने वाली कंपनी ओपन एआई के खिलाफ अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण नियमों के उल्लंघन और गलत सूचनाएं देने के मामले में जांच शुरू कर दी है। ओपन एआई ने पिछले साल एआई पर आधारित मॉडल चैट जीपीटी को पेश किया था। उसके बाद से ही ये चैट बॉट लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इस दौरान चैट जीपीटी पर जारी कुछ सूचनाओं को लेकर सवाल भी उठे हैं। इस बीच एफटीसी ने चैट जीपीटी की निर्माता कंपनी ओपन एआई को 20 पृष्ठों का एक नोटिस भेजकर कई मुद्दों पर जवाब देने को कहा है। इस नोटिस में एआई प्रौद्योगिकी उत्पादों, उपभोक्ताओं, निजता की सुरक्षा के उपायों और डेटा सुरक्षा प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गई है। एफटीसी के प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को ओपन एआई के खिलाफ जांच शुरू होने पर कोई टिप्पणी नहीं की। अमेरिकी समाचार पत्र द वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक एफटीसी ये जांच कर रहा है कि ओपन एआई कहीं निजता या डेटा सुरक्षा के अनुचित या भ्रामक तौर तरीकों या उपभोक्ताओं के हितों को नुकसान पहुँचाने वाले तरीके तो नहीं अपना रहा है। मीडिया कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरधारकों ने स्वतंत्र निदेशक के तौर पर अलीशियाई यी के निदेशक मंडल में दोबारा नियुक्ति के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कंपनी ने शेयर बाजार को बृहस्पतिवार को देर रात दी गई सूचना में कहा कि एलिशिया की पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को सिर्फ 42% शेयरधारकों का ही समर्थन मिला, जबकि 57.97% मत इसके खिलाफ थे। एलिशिया को 3 साल के एक और कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की संतुति की गई थी, लेकिन शेयरधारकों की मंजूरी नहीं मिलने पर उन्होंने 13 जुलाई 2023 की तारीख से पद छोड़ दिया। एलिशिया सलाहकार कंपनी कॉर्न फेरी की सिंगापुर स्थित वाइस चेयरमैन है। जी एंटरटेनमेंट ने कहा कि एलिशिया की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिए जाने के बाद कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम और सेबी प्रावधानों के अनुरूप अपनी सांगठनिक संरचना के लिए जरूरी कदम उठाएगा। देश में कोयला से गैस ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 6000 करोड़ रुपए की योजना लाने पर विचार कर रही है। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। कोयला मंत्रालय ने बयान में कहा कि देश में कोयला के गैस ईंधन बनाने की प्रौद्योगिकी अपनाने से कोयला क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी, जिससे प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अन्य जरूरी उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी। बयान के अनुसार मंत्रालय सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय से कोयला, लिग्नाइट से गैस ईंधन बनाने की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र योजना पर विचार कर रही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि देश के जीडीपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान विपणन गतिविधियों को मजबूती देकर बढ़ाया जा सकता है और इसमें किसान उत्पादक संगठनों की अहम भूमिका होगी। शाह ने यहां एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और विपणन पद्धतियों को अपनाने से कृषि एक लाभदायक कारोबार बन सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और एफपीओ मददगार बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि पैक्स सहकारी समितियों के बनाए हुए एफपीओ व्यक्तियों, कंपनी एवं साझेदारियों में बने एफपीओ की तुलना में किसानों को लाभ पहुंचाने में अधिक सक्षम है। इसके साथ ही उन्होंने पहले से सक्रिय एफपीओ को पैक्स समितियों के साथ करार करने का भी सुझाव दिया। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि देश के नागर विमानन क्षेत्र में इस समय वृद्धि का दौर शुरू है और ये एक आर्थिक शक्ति के रूप में देश के उदय में योगदान दे रहा है। सिंधिया ने यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चौथी हवाई पट्टी और ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे के उद्घाटन के मौके पर कहा कि मौजूदा समय देश में नागर विमानन क्षेत्र के वृद्धि के दौर की शुरुआत का है। उन्होंने कहा, भारत ने ऊंचे मुकाम पर पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इसमें नागर विमानन क्षेत्र के भी भारत की आर्थिक शक्ति के उत्थान में अपना योगदान दे रहा है। नागर विमानन मंत्री ने पिछले कुछ महीनों में देश की कुछ एयरलाइंस की तरफ से विमान विनिर्माता कंपनियों एयरबस और बोइंग को दिए बड़े ऑर्डर का जिक्र करते हुए कहा कि घरेलू विमानन कंपनियों के पास उपलब्ध विमानों की संख्या 1500 तक पहुंच जाएगी, जबकि फिलहाल इनकी संख्या 720 है। वैश्विक बाजारों में नरमी के बीच देश का निर्यात जून महीने में 22% घटकर 32.97 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले इसी माह में ये 42.28 अरब डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार आयात भी आलोच्य महीने में 17.48% घटकर 53.10 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि व्यापार क्षेत्र में वृद्धि वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर है। हालांकि उन्होंने कहा कि व्यापार घाटा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में 7.9% घटकर 57.6 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 62.6 अरब डॉलर था। बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर ने शुक्रवार को कहा कि विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश के बाद मुंबई में उसके 7.5 लाख उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कटौती हो जाएगी। महाराष्ट्र बिजली नियामकीय आयोग ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मार्च में मंजूरी दी थी। इसके खिलाफ टाटा पावर ने APTEL में अपील की थी, वहां से MERC के फैसले पर स्थगन आदेश दे दिया गया। टाटा पावर ने एक बयान में कहा, APTEL के आज पारित आदेश में MERC के बिजली दरें बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।